आज से नए टाइप का पाठ प्रारंभ हो रहा है। ये जो षोडश पदार्थ प्रारंभ में ही गिनाए गए थे, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, संशय प्रयोजन इत्यादि वाला, उसमें पहला जो पदार्थ था प्रमाण, उस प्रमाण के विवेचन के क्रम में अभी तक बात चल रही थी कि प्रमाण किसे कहते हैं, तो प्रमाकरणम प्रमाणम, और फिर प्रमा के बारे में बताया गया, करण के बारे में बताया गया, और करण के प्रसंग में ही कारण के बारे में आपको बताया गया। तो इस तरह से प्रमा को समझाया गया, करण को समझाया गया, कारण को समझाया गया। अब ये जो अभी तक जो लक्षण किया गया था वो समझाया गया आपको, प्रमा करणम ये लक्षण था और लक्ष्य क्या था, प्रमाण था। तो अभी तक लक्षण को समझाया गया, अब लक्ष्य को समझाया जाएगा। यहाँ से इसमें कहते हैं कि तानि च प्रमाणानि चत्वारी, माने जिस प्रमाण का लक्षण किया गया कि प्रमाकरणम प्रमाणम, वह जो प्रमाण है वह चत्वारी, चार प्रकार के प्रमाण होते हैं। तथा च न्याय सूत्रम, न्याय दर्शन का सूत्र जो है महर्षि गौतम ने लिखा है, तो उस महर्षि गौतम ने न्याय सूत्रम नाम के ग्रंथ में एक सूत्र बनाया है जिसमें कि चार प्रमाणों को गिनाया गया है। वह सूत्र है प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। इसमें चार प्रमाणों के नाम है, पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है उपमान प्रमाण और चौथा है शब्द प्रमाण। तो इस तरह से चार प्रमाण होते हैं। और इस तर्क भाषा पुस्तक में अब यहाँ से जो है चारों प्रमाणों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसमें सबसे पहला जो प्रमाण है वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में अब आगे जो है ये बताना शुरू करते हैं। प्रश्न करते हैं किम पुनः प्रत्यक्षम, कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। इसमें वस्तु जो है अपनी ओर से जोड़ लीजिए, तो क्या होगा कि वस्तु साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रमाणम, माने वस्तु को साक्षात्कार करने वाला जो प्रमा का करण है अर्थात प्रमाण है, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वस्तु को, वस्तु मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज जो है ना, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उनको आप वस्तु शब्द से या पदार्थ शब्द से कह सकते हैं। तो वस्तु साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, माने वस्तुओं को साक्षात्कार करने वाला जो प्रमाकरण होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रमाकरणम मतलब तो प्रमाणम ही होता है ना, तो आप प्रमाकरणम के बदले प्रमाण भी बोल सकते हैं कि वस्तु को साक्षात्कार करने वाला जो प्रमाण, उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब यहाँ पर साक्षात्कार शब्द जो आया है इसको थोड़ा हम विचार कर लेते हैं, ये साक्षात्कार क्या होता है। तो साक्षात में एक शब्द है साक्ष, साक्ष में जो सौ अक्ष और दीर्घ करके साक्ष बना है, तो सौ का अर्थ यहाँ पर सहित है और अक्ष का अर्थ यहाँ पर इंद्रिय है। इंद्रिय जानते हैं ना, पांच ज्ञान इंद्रिय होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, त्वचा माने चमड़ा, ये जो पांच ज्ञान इंद्रिय हैं। और ऐसे ही पांच जो है ना कर्मेंद्रिय होते हैं और एक अंतर इंद्रिय भी होता है, माने भीतर में रहने वाला इंद्रिय जिसे मन कहते हैं। तो इस तरह से ग्यारह इंद्रिय जो हैं होते हैं। उसमें यहाँ पर जो बात हो रही है वो कर्मेंद्रिय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय की बात की जा रही है। तो साक्ष में अक्ष का मतलब इंद्रिय हो गया ज्ञानेंद्रिय, और सौ माने सहित, माने ज्ञानेंद्रिय के साथ जब कोई वस्तु रहती है तब उसका साक्षात्कार होता है। ये मैं समझाने के लिए बता दिया। जैसे मैं मान लीजिए कि कोई घड़ा रखा हुआ है, उस घड़ा पर जब आँख की नज़र पड़ेगी तभी उसका धरा का साक्षात्कार होगा। तो जब नजर पड़ेगी तो क्या होगा, अक्ष माने नेत्र रूपी इंद्रिय के साथ जब वस्तु होगी तो फिर उस वस्तु का साक्षात्कार होगा। आप शायद जानते होंगे कि चक्षु इंद्रिय जो है माने आँख रूपी इंद्रिय जो है उससे रूप का साक्षात्कार होता है। कान श्रोत्रेंद्रिय जो है अर्थात कान रूप इंद्रिय जो है उससे शब्द का साक्षात्कार होता है। तो जब तक चक्षुरिंद्रिय का और रूप का साथ रहना नहीं होगा, एक साथ दोनों नहीं होंगे, तब तक साक्षात्कार संभव नहीं है। शब्द और श्रोत्रेंद्रिय जब एक साथ नहीं रहेगा तो शब्द का साक्षात्कार संभव नहीं है। तो साक्षात्कार जो है ना ये पांच विषयों का होता है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। किसका किसका, रूप, रूप का साक्षात्कार होता है नेत्र इंद्रिय से, रस का साक्षात्कार होता है रसनेन्द्रिय से माने जिह्वा इंद्रिय से, गंध का साक्षात्कार होता है घ्राणेन्द्रिय से, घ्राण इंद्रिय मतलब नासिका इंद्रिय से, और स्पर्श का साक्षात्कार होता है त्वक इंद्रिय से माने चमड़ा रूपी इंद्रिय से, और शब्द का साक्षात्कार होता है स्रोत्र इंद्रिय से माने कान रूपी इंद्रिय से। तो इस तरह से वस्तु से, वस्तु का साक्षात्कार करने वाला जो प्रमाकरण है अर्थात प्रमाण है, उस प्रमाण को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। आप ये अभी समझ गए होंगे। आगे कहते हैं कि साक्षात्कारिणी च प्रमा, ताकि साक्षात्कारिणी जो प्रमा होती है, प्रमा माने जानते हैं ना यथार्थक ज्ञानम प्रमा, तो साक्षात्कारिणी ये स्त्रीलिंग इसलिए कहा कि प्रमा जो है स्त्रीलिंग है, तो साक्षात्कारिणी प्रमा कौन होती है। तो असल में यहाँ क्या है, साक्षात्कारी प्रमा, ये प्रमा जो है ना इसका विशेषण है साक्षात्कारी। तो फिर अर्थ जो है ना थोड़ा बदल जाएगा। हमने क्या किया था, प्रमाकरणम के बदले प्रमाण को भी बोलने के लिए अलाउ कर दिया था, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका क्या करेंगे अर्थ, कि वस्तु से साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा, उसका जो करण, वह करण जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर से मैं बोलता हूँ, वस्तु से साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान, उसका जो करण है वह करण प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसीलिए आगे प्रश्न करते हैं कि साक्षात्कारिणी प्रमा किसको कहते हैं, माने वस्तु से साक्षात्कार करने वाली प्रमा कैसी होती है। तो आगे कहते हैं सा एव उच्यते या इंद्रिय जा, माने इंद्रिय जा, ज का मतलब होता है उत्पन्न होने वाली, जा का मतलब उत्पन्न होने वाली, तो इंद्रिय जा माने इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली। तो ये जो प्रश्न किया कि साक्षात्कारिणी प्रमा कैसी होती है, माने वस्तु से साक्षात्कार करने वाली बुद्धि प्रमा या यथार्थ ज्ञान कैसा होता है, कहा कि इंद्रियजा होता, इंद्रियजा माने इंद्रिय से जन्य होती है ये प्रमा, इंद्रिय से उत्पन्न होती है ये प्रमा। आगे कहते हैं कि साच, आपने देखा ना अभी जितनी भी मैंने प्रमा की बात की, अब जैसे रूप प्रमा, रस प्रमा, गंध प्रमा, शब्द प्रमा, स्पर्श प्रमा, ये पांच तरह की प्रमा है, ज्ञान और प्रमा पर्यायवाची शब्द है, वो सारे जो है ना वो इंद्रिय जा ही है, प्रमा इंद्रिय से ही उत्पन्न होती है, चक्षुरिंद्रिय से रूप प्रमा उत्पन्न होगी, फिर श्रोत्रेंद्रिय से गंध प्रमा उत्पन्न होगी, रसनेन्द्रिय से रस प्रमा उत्पन्न होगी, त्वगिंद्रिय से स्पर्श प्रमा उत्पन्न होगी। तो इस तरह से ये साक्षात्कारिणी जो प्रमा है वह इंद्रियजा होती है, माने इंद्रिय से जन्य होती है, इंद्रिय से उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर साच द्विधा, वह जो प्रमा है साक्षात्कारिणी प्रमा, वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन, स्वविकल्पक प्रमा और निर्विकल्पक प्रमा, स्वविकल्पक निर्विकल्पक भेदात। तो स्वविकल्पक भेद से और निर्विकल्पक भेद से साक्षात्कारिणी प्रमा दो दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण हैं, इन्होंने बताया था कि साक्षात्कारी प्रमा करणम प्रत्यक्षम, माने वस्तु से साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा है उस प्रमा का जो कारण है वह प्रत्यक्ष है। तो इस तरह से दो शब्द इस प्रत्यक्ष के लक्षण में आए, एक तो साक्षात्कारी प्रमा और दूसरा करण। तो पहले साक्षात्कारी प्रमा के बारे में इन्होंने बताया कि साक्षात्कारी प्रमा किसे कहते हैं, तो जो इंद्रिय से जन्या होती है उसको हम साक्षात्कारी प्रमा कहते हैं। अब दूसरा शब्द है करणम। तो साक्षात्कारी प्रमा का करण कितने होते हैं, तो उसके लिए बताया कि तस्याह, तस्याह माने साक्षात्कारी प्रमायाह, साक्षात्कारी प्रमा का करणम त्रिविधम, तीन प्रकार का करण होता है। वो तीन कौन कौन है, तो कदाचित इंद्रियम, कभी जो है साक्षात्कारी का साक्षात्कारिणी प्रमा का। ऐसा है कि जब हम साक्षात्कारिणी प्रमा को एक साथ लिखेंगे ना तो नी हट जाएगा, केवल री रहेगा, इसलिए लक्षण में है ना साक्षात्कारी प्रमा करणम प्रत्यक्षम। और जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो फिर कहेंगे साक्षात्कारिणी प्रमा। क्या है कि जब एक साथ लिखते हैं तो वहाँ समास रहता है, और समास में ना ये जो है स्त्री प्रत्यय का कुंबद भाव हो जाता है, माने स्त्री प्रत्यय उसमें से चला जाता है, इसलिए साक्षात है तो साक्षात्कारिणी प्रमा, लेकिन समास होने के कारण वो जो स्त्री प्रत्यय है वह उसमें से निकल जाता है, तो बच जाता है साक्षात्कारी प्रमा। और जब हम समास नहीं करते हैं, अलग अलग बोलते हैं दोनों शब्दों को, तो फिर कहेंगे साक्षात्कारिणी प्रमा, ठीक है ना। तो तस्याह कारणम त्रिविधम, माने साक्षात्कारिणी प्रमा के तीन करण होते हैं, कदाचित इंद्रियम, कभी जो है इंद्रिय करण बनता है, कदाचित इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, और कभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष करण बनता है। ये मैं समझाऊंगा आपको कि इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष क्या होता है। और तीसरा का कदाचित ज्ञानम, और कभी जो है वह ज्ञान जो है वह करण बनता है। तो इसमें पहला जो करण है कदाचित इंद्रियम, ये तो आप समझते ही हैं, अब मैंने बताया था पांच ज्ञान इंद्रिय होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है, और वो है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये जो है ना साक्षात्कारिणी प्रमा के ये पांचों ज्ञान इंद्रिय जो है कभी करण होते हैं। दूसरा जो करण बताया इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, इसमें इंद्रिय तो आप जानते ही हैं, और इंद्रिय अर्थ, ये जो अर्थ शब्द है ना इसका अर्थ करिए विषय। अब फिर कहेंगे कि गुरुजी ये विषय क्या हुआ, तो इंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है, जिसका ग्रहण किया जाता है, उसे हम इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय का अर्थ कहते हैं, इंद्रिय का विषय कहते हैं। अब जैसे नेत्र इंद्रिय से किसका ग्रहण किया जाता है, रूप का ग्रहण किया जाता है, तो उसका नेत्रेंद्रिय का अर्थ क्या हो गया, रूप, वही उसका विषय हुआ, क्योंकि नेत्र रूपी इंद्रिय से है, नेत्र इंद्रिय से रूप विषय को हम ग्रहण करते हैं। ऐसे ही श्रोत्रेंद्रिय से किसका ग्रहण होता है, शब्द का ग्रहण होता है, तो श्रोत्रेंद्रिय का अर्थ हो गया शब्द। ऐसे ही घ्राणेन्द्रिय से किसका ग्रहण होता है, गंध का ग्रहण होता है, तो घ्राणेन्द्रिय का विषय हो गया गंध। तो इस तरह से जिसका ग्रहण किया जाता है उसे हम अर्थ कहते हैं अथवा विषय कहते हैं। तो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय जो पांच हैं, अर्थ माने उन ज्ञानेन्द्रियों के विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांच जो है ना इंद्रिय के अर्थ होते हैं, इंद्रिय के विषय होते हैं। और सन्निकर्ष, इन दोनों का सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मतलब एक जगह पर होना, इकट्ठा होना, क्योंकि अगर इंद्रिय अलग रहेगी कहीं हैं और अर्थ उसका कहीं अलग रहेगा तो इसका मतलब है सन्निकर्ष नहीं हुआ, एक जगह नहीं रहा ना दोनों। तो सन्निकर्ष का अर्थ आप अगर एक शब्द में करना चाहें तो सान्निध्य कर लीजिए या संयोग कर लीजिए, ठीक है, सबसे बढ़िया ये है संयोग। तो इंद्रिय का और अर्थ का संयोग जो है, संयोग मतलब एक जगह रहना, उसी को कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। और तीसरा जो है कदाचित ज्ञानम, यहाँ जो ज्ञान है तो ज्ञान जो है दो प्रकार का बताया गया, ऊपर में कहा ना कि साक्षात्कारिणी प्रमा जो है वह दो प्रकार का होता है, स्वविकल्पक और निर्विकल्पक। तो प्रमा और ज्ञान पर्यायवाची शब्द है, इस तरह से ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वह दो प्रकार का होता है, स्वविकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान। तो यहाँ जो कदाचित ज्ञानम है इस ज्ञानम से हम दोनों प्रकार के ज्ञान को ले लेंगे, सविकल्पक ज्ञान और निर्विकल्पक ज्ञान। ये स्वविकल्पक ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान क्या है इसको आगे बताया जाएगा। तो इस तरह से अभी तक कितनी बातें आई, ये हुआ कि प्रमाण चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। उसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहा जाता है, तो वस्तु को साक्षात्कारिणी, वस्तु को साक्षात्कार करने वाली जो प्रमा, उस प्रमा का जो करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अब वह साक्षात्कारिणी जो प्रमा है वह किसे कहते हैं, तो इंद्रिय जा साक्षात्कारिणी प्रमा इंद्रिय से जन्या होती है, इंद्रिय से उत्पन्ना होती है। साच द्विधा माने वह साक्षात्कारिणी प्रमा दो प्रकार का होता है, इसको आप प्रत्यक्ष प्रमा भी कह सकते हैं और साक्षात्कारिणी प्रमा भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान भी कह सकते हैं। तो साच द्विधा वह दो प्रकार का है, स्वविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, स्वविकल्पक प्रमा और निर्विकल्पक प्रमा, इसको आप स्वविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। तस्याह करणम त्रिविधम, ये जो साक्षात्कारिणी प्रमा है दो प्रकार की, स्वविकल्पक प्रमा और निर्विकल्पक प्रमा, उसके तीन करण होते हैं। कभी तो इंद्रिय उसका करण होता है, कभी जो है इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष करण होता है, सन्निकर्ष माने संयोग करण होता है, और कदाचित ज्ञानम, और कभी ज्ञान ही जो है उसका करण होता है। इस तरह से आज के पाठ में प्रमाण के भेद एवं उसके कितने करण हैं और वो कौन कौन से करण हैं इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब जो है आगे ये बताया जाएगा। उन्होंने कहा था कदाचित इंद्रियम करणम, माने कभी इंद्रिय करण होता है तो कभी इंद्रियात संकर्षा करण होता है, तो ये आपको बताया जाएगा कि कद माने किस समय में इंद्रिय करण होता है, किस समय में इंद्रियात संकर्ष करण होता है और किस समय में ज्ञान करण होता है, ये बात अगले पाठ में आपको बताई जाएगी। आज का यहीं रखते हैं।